आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सोचा समझा फिकर करियो।
एक थॉट एक्सपेरिमेंट।
हाँ, नाओमी ऑल्डमैन का 2016 का उपन्यास द पावर। ये किताब एक ऐसा सवाल उठाती है जो आपको मतलब अंदर तक हिला देगा।
सवाल बहुत सीधा सा है लेकिन उसके जो नतीजे हैं वो बहुत गहरे हैं।
सवाल ये है कि क्या होगा अगर दुनिया भर में महिलाओं को अचानक एक ऐसी शारीरिक शक्ति मिल जाए जो पुरुषों से कहीं ज्यादा हो और ये शक्ति हमेशा के लिए रहे। और ये सवाल इसलिए भी ज्यादा धारदार हो जाता है क्योंकि ऑल्डरमैन ये इसे किसी जादुई दुनिया में नहीं रखा।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसकी जड़ें जीव विज्ञान में हैं।
कहानी की शुरुआत होती है जब दुनिया भर में किशोरियों के शरीर में कॉलर वोन के पास एक नई मांसपेशी जिसे स्केन कहा जाता है वो सक्रिय हो जाती है।
और इस स्केन से वो क्या कर सकती हैं?
इससे वे अपने हाथों से बिजली के जान लेवा झटके पैदा कर सकती हैं।
मतलब कोई बाहरी हथियार नहीं है जिसे छीना जा सके।
नहीं, ये उनके शरीर का ही एक हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ किशोरियों तक सीमित नहीं है, वे इस शक्ति को बड़ी उम्र की महिलाओं में भी जगा सकती हैं। जरा सोचिए, हजारों सालों से चला आ रहा शक्ति का पूरा समीकरण, समाज का पूरा ढांचा
एक झटके में पलट जाता है।
और ये उपन्यास ठीक उस समय आया जब #MeToo जैसे आंदोलन दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे थे।
बिल्कुल, इसने उस बहस को और भी हवा दी। शायद इसीलिए इसने 2017 का वो प्रतिष्ठित बेलीज विमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन भी जीता।
दिलचस्प बात यह भी है कि नाओमी ऑल्डरमैन की मेंटोर मार्गरेट एटवुड थी, द हैंडमेड्स टेल की लेखिका।
हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता और समाज पर इतनी गहरी और बेचैन करने वाली नजर उन्हें कहां से मिली।
और सिर्फ कहानी का विचार ही नहीं, उसे बताने का तरीका भी उतना ही अनोखा है ना।
हाँ, और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है। ये एक उपन्यास के भीतर उपन्यास है।
अच्छा, मतलब हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसे हमारे समय से कोई 5000 साल बाद के भविष्य में लिखा गया है।
5000 साल बाद?
हाँ, एक पुरुष इतिहासकार है, नील एडम आमन, और उस भविष्य में एकमात्र सत्ता है यानी महिलाओं का राज है।
तो पुरुषों के प्रभुत्व का विचार
उनके लिए एक मजाक जैसा है। इतना अजीब है कि नील को अपनी महिला संपादक को यह समझाना पड़ता है कि उसकी कहानी सच पर आधारित है, कोई कल्पना नहीं।
ये तो कमाल का तरीका है पाठक को आईना दिखाने का। मतलब हम अपनी ही दुनिया को एक बाहरी व्यक्ति की नजर से देखने पर मजबूर हो जाते हैं।
बिल्कुल, जो हमें सामान्य लगता है वो अचानक कितना अजीब और तर्कहीन लगने लगता है।
तो इस बदलती हुई दुनिया को हम किन की नजरों से देखते हैं? कहानी में मुख्य किरदार कौन है?
कहानी 4 मुख्य किरदारों के जरिए आगे बढ़ती है और ये 4 जैसे इस नई दुनिया के 4 स्तंभों का प्रतीक बन जाते हैं, धर्म, अपराध, राजनीति और मीडिया।
चलिए पहले किरदार से शुरू करते हैं।
सबसे पहले है एली। अमरीका के पालक घर में पली बड़ी एक लड़की, वो यौन शोषण का शिकार है, मतलब समाज की सबसे कमजोर, सबसे शक्तिहीन कड़ी।
तो जब उसे ये शक्ति मिलती है तो उसके लिए तो ये एक चमत्कार जैसा होगा।
बिल्कुल, उसके लिए ये आज़ादी और इंसाफ का हथियार है, दैवीय चमत्कार, और वो इसका इस्तेमाल भी करती है अपने शोषक के खिलाफ,
आत्मरक्षा में।
हाँ, आत्मरक्षा में वो उसे मार देती है और एक कॉन्वेंट में शरण लेती है। वहां उसके अंदर से एक आवाज उसे रास्ता दिखाती है
और यहीं से वो मदर ईव बनती है।
हाँ, यहीं से एली का रूपांतरण मदर ईव में होता है। वो एक नए धर्म की नींव रखती है जो इस शक्ति को पवित्र स्त्री शक्ति का प्रतीक बताता है, और देखते ही देखते लाखों महिलाएं उसके अनुयायी बन जाती हैं।
तो एक तरफ है एली जो इस शक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ती है, लेकिन दूसरा सिला भी तो है जो बिल्कुल जमीनी है, रॉक्सी मॉन्क।
बिल्कुल, रॉक्सी लंदन के एक बड़े क्राइम सिंडिकेट के सरगना की बेटी है। उसकी शक्ति बहुत कच्ची और प्रचंड है। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के हत्यारों से कितनी बेरहमी से बदला लेती है।
तो उसके लिए ये शक्ति कोई दैवीय वरदान नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए ये धंधा, नियंत्रण और दबदबा बनाने का एक औजार है। वो अपने पिता के आपराधिक साम्राज्य में अपनी जगह बनाती है और ग्लिटर नाम की एक दवा का नेटवर्क फैलाती है।
अच्छा, और ये दवा क्या करती है?
ये महिलाओं की इस शक्ति को और बढ़ा देती है।
ये बहुत दिलचस्प है। एक ही शक्ति लेकिन 2 लोगों के लिए उसके मायने कितने अलग हैं।
एक के लिए आस्था, दूसरे के लिए व्यापार।
और फिर आती हैं मार्गोट क्लियरी, जो शायद इन दोनों के बीच कहीं खड़ी हैं, एक राजनेता।
सही कहा, मार्गोट एक महत्वाकांक्षी अमेरिकी मेयर हैं जो बाद में सेनेटर बनती हैं। वो इस शक्ति को एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखती हैं। हाँ, वो समझ जाती हैं कि इस नई शक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे नियंत्रित करना होगा, तो वो लड़कियों के लिए सरकारी ट्रेनिंग कैंप शुरू करती हैं।
पर क्या ये सच में सशक्तिकरण है या फिर सरकारी नियंत्रण का एक नया तरीका?
यही सवाल मार्गोट का किरदार खड़ा करता है कि क्या पुरानी व्यवस्थाएं बस नए चेहरों के साथ वापस आ जाती हैं? सत्ता का खेल वही रहता है, बस खिलाड़ी बदल जाते हैं।
और इन सब को देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है हमारा चौथा किरदार टुंडे एडो।
हाँ, नाइजीरिया का एक युवा पत्रकार। असल में वही इस बदलती दुनिया में एक पुरुष के नजरिए से हमारा मुख्य झरोखा है।
उसकी यात्रा शायद इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। शुरुआत में वो एक हीरो की तरह है ना?
बिल्कुल, वो उन पहली लड़कियों के वीडियो बनाता है जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं और उसके वीडियो वायरल हो जाते हैं। वो सऊदी अरब जैसी जगहों पर जाता है जहां महिलाएं शक्ति के दम पर क्रांति कर रही हैं, तब वो महिलाओं का सहयोगी है,
एक विशेषाधिकार प्राप्त पर्यवेक्षक।
लेकिन जैसे जैसे 10 साल बीतते हैं और दुनिया पूरी तरह बदल जाती है, उसका दर्जा भी बदल जाता है। जिस दुनिया में महिलाएं सत्ता में हैं, वहां एक पुरुष पत्रकार होना खतरनाक है।
वो एक सहयोगी से एक निशाना बन जाता है।
हाँ, उसे उसी डर, उसी असहायता का अनुभव होता है जिसके साथ महिलाएं सदियों से जीती आई हैं। कहानी के अंत तक वो एक टूटा हुआ इंसान है।
तो ये बदलाव ये रातों रात नहीं हुआ, 10 साल लगे इस दुनिया को पलटने में। ये क्रांति फैली कैसे?
पहला चरण था लड़कियों का दिन। दुनिया भर से ऐसी घटनाओं की खबरें आने लगी। टुंडे जैसे लोगों ने वीडियो बनाए, सरकारों ने घबरा कर इसे दबाने की कोशिश की।
अफवाह बताया होगा।
हाँ, लेकिन इंटरनेट के जमाने में ये नामुमकिन था। सच जंगल की आग की तरह फैल गया।
और फिर
सत्ता का सुदृढ़ीकरण हुआ होगा जब लोगों ने मान लिया कि ये नई हकीकत है।
बिल्कुल,
मार्केट के ट्रेनिंग कैंप खुलने लगे, मदर ईव का धर्म फैलने लगा, रॉक्सी का ड्रग्स का कारोबार बढ़ने लगा, समाज के हर पहलू पर इसका असर दिखने लगा।
जैसे
सेना में महिलाओं की विशेष टुकड़ियां बनने लगी, विज्ञापन बदलने लगे, पुरुषों के लिए रात में अकेले बाहर ना जाने की चेतावनियां जारी होने लगी।
टुंडे ने मोल्दोवा जैसे देश की रिपोर्टिंग की जहां महिलाओं के गैंग पुरुषों की तस्करी कर रहे थे।
हाँ, और कहानी के मध्य तक आते आते दुनिया पूरी तरह से एक नई शक्ल ले चुकी थी, एक नई विश्व व्यवस्था।
और इसी में मोल्दोवा में बेसापारा नाम का एक नया देश ही बन गया था।
हाँ, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया जाता था और जहां पुरुषों को गुलाम बनाया जाता था। वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, सेना, सब पर महिलाओं का नियंत्रण था।
और जाहिर है, जब इतनी शक्ति कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो तो टकराव तो होना ही था। कहानी का अंत, जिसे महाविनाश कहा गया है,
वो इसी टकराव का नतीजा है। सभी किरदारों की कहानियां एक विनाशकारी मोड़ पर आकर मिलती हैं। मदर ईव एक वैश्विक धार्मिक नेता बन चुकी हैं और मार्गोट एक शक्तिशाली अमेरिकी सीनेटर,
और दोनों एक दूसरे को अपने रास्ते का कांटा समझती हैं।
बिल्कुल। इसी बीच रॉक्सी को धोखा मिलता है और उसकी शक्ति छीन ली जाती है। शक्तिहीन होकर वह मदर ईव के पास पहुंचती है।
डरा सहमत टुंडे भी वहीं शरण लेता है। तो सारे किरदार एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं।
हाँ, दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी है और इन शक्तिशाली महिलाओं के बीच का टकराव उस चिंगारी का काम करता है
और एक वैश्विक युद्ध छिड़ जाता है।
हाँ, जिसे महाविनाश कहा गया। ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है। महिलाएं अपनी जैविक शक्ति का इस्तेमाल करती हैं, जिससे दुनिया की तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तबाह हो जाता है।
और यही पुरानी दुनिया का अंत करता है
और उस भविष्य की मातृसत्ता की नींव रखता है जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में नील एडम्स आमन करता है।
तो कहानी खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में घूमता है वो ये है कि लेखिका कहना क्या चाहती हैं? क्या ये किताब नारीवाद का जश्न मनाती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा।
कड़वी टिप्पणी है।
इसका सबसे केंद्रीय विचार शायद यही है कि सत्ता भ्रष्ट करती है
और असीम सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता किसके हाथ में है, पुरुष या महिला।
मतलब समस्या लिंग में नहीं बल्कि सत्ता के ढांचे में ही है। जब महिलाओं को वही असीम शक्ति मिली तो उन्होंने कोई शांतिपूर्ण बराबरी वाली दुनिया नहीं बनाई।
उन्होंने भी वही हिंसा, वही दमन, वही गुलामी का रास्ता अपनाया जो पुरुषों ने हजारों साल तक अपनाया था। बस उत्पीड़क का चेहरा बदल गया, उत्पीड़न का तरीका नहीं।
और ये हमें दूसरे बड़े विचार पर लाता है कि जेंडर या लिंग काफी हद तक एक सामाजिक संरचना है।
हाँ, उपन्यास दिखाता है कि आक्रामकता, डर या भावनात्मक होना, ये गुण किसी लिंग से जुड़े नहीं हैं, बल्कि समाज में शक्ति के समीकरण से पैदा होते हैं। जब समीकरण पलटता है
तो व्यवहार भी पलट जाते हैं।
बिल्कुल, यह उन सभी दलीलों को खारिज कर देता है जो कहती हैं कि कोई एक लिंग स्वाभाविक रूप से बेहतर या ज्यादा नैतिक होता है।
मदर ईव का किरदार भी तो यही दिखाता है कि कैसे एक अच्छी चीज जैसे कि मुक्ति का विचार एक कट्टरपंथी और दमनकारी विचारधारा में बदल सकता है।
हाँ, कि धर्म को कैसे नियंत्रण के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
और अंत में उपन्यास का ढांचा ही हमें सबसे बड़ी सीख देता है, इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं।
सही कहा, 5000 साल बाद के भविष्य में पुरुषों के शासन का युग एक मजाक बन के रह गया है, एक ऐसी कहानी जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं और किन की कहानियों को हमने नजरअंदाज कर दिया है
या मिटा दिया है।
तो कुल मिलाकर द पावर कोई आसान जवाब नहीं देती, ये परेशान करती है, असहज करती है।
ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या इंसान, चाहे वो कोई भी हो, सत्ता संभालने के काबिल है, या फिर असली मुक्ति शक्ति के समीकरण को पलटने में नहीं, सन पर कौन बैठेगा इसकी नहीं होनी चाहिए,
बल्कि इस बात की होनी चाहिए कि क्या हमें सिंहासन की जरूरत ही है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।